हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 14 और 15। कृपया इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने श्रवण करने एवं अध्ययन करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेधु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति द्विषतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरो मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधरं शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। सूची सोनिक आदि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 6 में बताया, तवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदुक्षजे अहितुकिया प्रतिहिताः ययात्मा सुप्रसीदते। कि यदि आत्मा को प्रसन्न करने की कोई विधि है तो वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। क्यों? क्योंकि वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता सनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम से यद हैतुकम। यदि कोई ये कहे कि भाई ज्ञान और वैराग्य के अतिरिक्त खाली भक्ति से क्या प्रयोजन, तो बताते हैं कि वासुदेव की भक्ति में इतना पावर है कि ज्ञान और वैराग्य तो उसमें स्वतः ही आ जाते हैं। इसे कहा धर्म स्वनिश्चित पुंसा विश्वक सेन कथा सुया नोत्तारयेदियतिरतिम श्रम एव हि केवलम। और भक्ति को, संपूर्ण भक्ति जितना भी नवदा भक्ति है, उसको श्रवण के अंदर समेट करके कहा कि यदि आप अपने स्वानुष्ठित धर्म का बिल्कुल अच्छे तरीके से पालन करते हो, लेकिन भगवान की कथा में रति नहीं है, उत्पन्न नहीं हो रही है, प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो वो मात्र श्रम है। और इस चीज को श्लोक नंबर 13 में बताया, अतः पुंवेद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम्। कि वास्तव में यदि वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन हो रहा है, तो उसका प्रूफ क्या है कि आपसे भगवान हरि संतुष्ट हो। यदि भगवान हरि संतुष्ट हैं, तो समझिए कि आप भगवान कृष्ण यदि खुश हो रहे हैं, तो समझो आपका सारे धर्म जो है वो सही तरह से हो रहे हैं। और भगवान कैसे खुश होते हैं? भगवान खुश होते हैं उनकी कथा श्रवण करने से, उनके नाम का कीर्तन करने से। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने की विधि को नहीं अपना रहे हैं, तो सब बेकार है। फिर हमारा सारा का सारा परिश्रम व्यर्थ है और हम निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। चोर कहलाते, भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में कि भुंक्ते स्तेन, श्लोक नंबर 12 चैप्टर नंबर 3 में भगवान ने बताया, तैर दत्ता न प्रदायाभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव हि। जो उन उपहारों को फिर से अर्पण किए बगैर खुद स्वयं अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भोगता है, तो वो चोर है। इसको कैसे समझ सकते हैं कि संसार में सब कुछ जो भी हम भोग कर रहे हैं वो कृष्ण का दिया हुआ है। जैसे एक चोर हो, चोर का एक ग्रह हो, और आपस में यह डिसाइड करें कि भाई आज रात को हम इस बैंक में डाका डालेंगे, और उससे जो भी धन, और वो उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से सक्सेस हो जाए और लेकर भी आ जाए सारा धन, पूरा धन। जब भी वो लेकर आए तो एक पेड़ के नीचे या फिर एक गोडाउन के अंदर या कहीं पर भी उस धन को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भाई इतना आपका है। और कोई उसमें से जो उनका सरदार है वो कह रहा है कि देखो ये धन एकदम ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें देखना कहीं बेईमानी ना हो जाए। तो वास्तव में उसमें से एक पैसा लेना भी क्या ईमानदारी है? क्योंकि वो सब चोरी का है। तो है ना, उस टाइम पर यदि पुलिस आ जाए और वो बोले कि नहीं हम तो ईमानदारी से दे रहे हैं, तो बोला हम भी तुम्हें, पुलिस वाला कहेगा कि हाँ मैं भी फिर तुम्हें ईमानदारी से ही पनिशमेंट करवाऊंगा, कोई बेईमानी नहीं करूंगा। तो वास्तव में यमराज आके यही कहेगा कि क्योंकि आपने भोगा वो भगवान का था और भगवान को आपने अर्पित नहीं किया, भगवान को प्रसन्न नहीं किया, भगवान को संतुष्ट नहीं किया, तो तुमने जो कुछ भी संसार में भोगा है, इवन सांस ली है ना, वो भी तुम्हारा अपराध है। तो उसका भी हिसाब किताब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चारि वर्णाश्रम यदि कृष्ण नाही बजे स्वकर्म करिते रव रवि परे मजे। अर्थात जीवन का लाभ है कृष्ण को संतुष्ट करना, संसिद्धि हरितोषण। तो इसके लिए क्या करना है, आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 14 में। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, कृपया मेरे साथ साथ इसको रिसाइट कीजिए। सूत जी कहते हैं, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पते श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देयः पूजस्य नित्यदा। తస్మాదేకేన మనసా భగవన్ తత్వతాం ప్రతి శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యశ్చ దేయః పూజ్యశ్చ నిత్యదా తస్మాదేకేన మనసా భగవన్ సత్వతాం ప్రతి శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యశ్చ దేయః పూజ్యశ్చ నిత్యదా తస్మాదేకేన మనసా భగవన్ సత్వతాం ప్రతి శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యశ్చ దేయః పూజ్యశ్చ నిత్యదా తస్మాదేకేన మనసా భగవన్ సత్వతాం ప్రతి శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యశ్చ దేయః పూజ్యశ్చ నిత్యదా తస్మాదేకేన మనసా భగవన్ సత్వతాం ప్రతి శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యశ్చ దేయః పూజ్యశ్చ నిత్యదా తస్మాదేకేన మనసా భగవన్ సత్వతాం ప్రతి శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యశ్చ దేయః పూజ్యశ్చ నిత్యదా తస్మాదేకేన మనసా భగవన్ సత్వతాం ప్రతి శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యశ్చ దేయః పూజ్యశ్చ నిత్యదా తస్మాదేకేన మనసా భగవన్ సత్వతాం ప్రతి శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యశ్చ దేయః పూజ్యశ్చ నిత్యదా. శబ్దం కా అర్థ దేఖియే. తస్మాత్, తస్మాత్ మతలబ్ అతః, मतलब इसलिए, क्योंकि भगवान को संतुष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो इसलिए क्या करो, एकेन मनसा. एकेन का मतलब होता है एकाग्र, यानी एकेन शब्द बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें. एकेन का मतलब होता है मन को पूर्ण, यानी चारों ओर से समेट कर एकाग्र कर दो. मन को इधर उधर नहीं बांटना है, एक जगह पर टिकाना है. कहाँ जगह पर? कि वो जो कार्य आप कर रहे हो भगवान को संतुष्ट करने के लिए. अब भगवान को संतुष्ट करने के लिए कौन कौन से कार्य होते हैं आगे बताएंगे. श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देयेश्च पूज्यश्च नित्यदा, यानी कि श्रवण करना, कीर्तन करना. ये जो नवधा भक्ति है ना, तो नवधा भक्ति के किसी भी एक अंग को, चाहे आप ले लो श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चन कर रहे हो, मतलब जो भी कर रहे हो वो एकेन मनसा. एकेन मनसा मतलब भक्ति के दूसरे अंग में जो अंग आप कर रहे हो, उस समय भी दूसरे कोई अंग को, उस अंग को डिस्टर्ब करने की परमिशन नहीं हो. जैसे आप यदि जप कर रहे हो तो केवल जप के उन शब्दों के ऊपर आपका पूरा पूरा मन लगाओ, पूरा पूरा ध्यान उन शब्दों के ऊपर, क्योंकि आप कर रहे हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए. तो वो एक परफेक्ट चीज है. ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ ऐड करोगे तो परफेक्शन आएगी. नहीं, जप करना अपने आप में परफेक्ट है. तो यदि आप भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं. ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कथा सुनते सुनते जप करना पसंद करते हैं कि कथा श्रवण करेंगे तो मन लगेगा. नहीं, मन लगाने की जरूरत नहीं है. मन में सिर्फ यह विचार होना चाहिए कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, जो मैं जप कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा साधन है मेरे कृष्ण को प्रसन्न करने के. उसमें एकदम परफेक्शन होनी चाहिए. मैं सिर्फ और सिर्फ इस जप को ही सब कुछ जीवन का देय मानकर, जीवन का लक्ष्य मानकर, वो नवदा भक्ति का वो अंग जो आप जो जब आप श्रवण कर रहे हो, तो श्रवण करते वक्त आपको कुछ और उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है. श्रवण करना संपूर्ण कंप्लीट है. ये ऐसा नहीं है कि श्रवण आप कर रहे हो तो साथ में आपको इसके कुछ ऐड करना है. नहीं, वो आप श्रवण कर रहे हो तो उसके अंदर मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है. आप केवल और केवल उस टाइम पर श्रवण ही करो। श्रवण के टाइम पर स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, स्मरण स्वयं हो जाएगा। जो आप श्रवण कर रहे हो उसमें आपका ध्यान लगा हुआ है तो आपको वो लीला जो बोली जा रही है उसके अंदर हृदय खुद ही लगेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसके साथ साथ जप करूं, कुछ लोग जप करते ना, तो ऐसे नहीं है। और यदि आप अर्चन करो, जैसे आप पूजा करो भगवान की, तो उस वो कंप्लीट है। आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आरती कर रहे हो या जो कोई भी भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ एड करने की जरूरत है। भगवान का ये सेवा मुझे भगवान ने दी है, मुझे उसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो करो आप। वो भगवान का जो भी कार्य आप कर रहे हो वो एक ही मनसा होना चाहिए, यानी एक मन से। मन को ये परमिशन ही नहीं होनी चाहिए कि उस भक्ति सेवा का अंग जो मैं कर रहा हूँ उसके अतिरिक्त कुछ और वो करे या वो सोचे वो या वो करने की चेष्टा करे। बस केवल उसी एक अंग पर ही आपका पूरा का पूरा ध्यान टिका होना चाहिए। तो कहा तस्मात एकेन मनसा, इसलिए एक मन से, एकाग्र मन से भगवान शाश्वताम तति, भगवान कहते हैं कृष्ण को, अर्थात जो षडेश्वरी से युक्त हो, जिसके अंदर संपूर्ण मात्रा में षडेश्वरी हो, पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण धन, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण सुंदरता, वो भगवान कहलाता है। और वो क्या है? सात्वताम पति। सात्वताम कहते हैं भक्तों को, इसे भागवतम में हम सात्वताम पढ़ते हैं ना अक्सर, वो कहते हैं भक्तों को। पति माना रक्षा करने वाला। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्या भगवान सिर्फ भक्तों की रक्षा करेंगे? बाकी लोग भगवान के ही तो संतान है, तो भी वो खाली भक्तों की रक्षा करेंगे? फिर भगवान तो पक्षपात कर रहे हैं। हालांकि भगवान कहते हैं 9.29 में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोति न प्रियः, मैं सबके साथ समान हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं द्वेष कर रहा हूँ और ना ही कोई ऐसा है जिससे मैं एक्स्ट्रा प्रेम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सबके साथ समान। सर्वभूतेषु, जीवन में जितने भी जीव है, खाली मनुष्य की बात नहीं करते, भगवान कहते जितने भी जीव प्राणी हैं उन सब के साथ समान रहता हूँ। फिर यहाँ पर सात्वताम पति लिखा है, यानी कि खाली भक्तों को प्रेम करते हैं या भक्तों की रक्षा कर रहे। तो भगवान ने पहले ही कह दिया 9.11 में, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तत्रैव बचामि अहम्। जिस भाव से जो कोई मेरी शरण में आएगा उसी भाव से मैं उसे संतुष्ट करूंगा। तो यदि भगवान के भक्त उसे प्रीतम के रूप में स्वीकार करते हैं, उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, और भगवान आगे स्वयं बताते हैं ये भजन्ते तो माम भक्त्या, जो प्रेम से मुझे भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं, मेरा श्रवण करते हैं मेरी कथाओं का, जो सदैव मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मई ते चाप्य हम, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं, यानी कि वो मेरे बन जाते, सदैव मेरे ही विषय में श्रवण और कीर्तन करना चाहते हैं, तो फिर मैं भी उनका हो जाता हूँ। तो यहाँ पर इसीलिए, क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय में रहना स्वीकार करते हैं, भक्तों की आज्ञाओं का पालन करना स्वीकार करते हैं, और अपने भक्तों की सदैव रक्षा, परित्राणाय साधुना, मैं सदैव अपने साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ। तो यहाँ पर इसलिए भगवान को सात्वताम पति कहा गया, यानी भक्तों के रक्षक। इसलिए भगवान जो कि भक्तों के रक्षक है, उनका श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, सदैव क्या करना चाहिए? उनके नाम को श्रवण करना चाहिए, उनके गुणों को श्रवण करना चाहिए, उनकी लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथाओं को। देखो और भी यहाँ पर आगे भी भक्ति के ना अंग बताए जाएंगे इसी श्लोक में, लेकिन सबसे पहला आया है श्रोतव्य, अर्थात श्रवण करना। सबसे पहले अगर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है तो श्रवण करो। श्रवण में बहुत पावर है। हम क्या सोचते हैं, श्रवण कर लें तो फिर भक्ति करें, नहीं, ये भागवतम श्रवण कर लें तो भक्ति करने नहीं, श्रवण ही भक्ति है। तो भगवान उससे बहुत संतुष्ट होते हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्य, ये दो मुख्य गुण है भगवान को प्रसन्न करने के, ये दो मुख्य अंग है। पहला क्या है? श्रोतव्य, अर्थात श्रवण करना, भगवान के विषय में सुनना, और कीर्तितव्य अर्थात गुणों गुणगान के योग्य, यानी कि ऐसे भगवान जो जिनकी कथाएं श्रवण करने के योग्य हैं और जिनकी कीर्ति जो है वो बखान करने के योग्य। वास्तव में कीर्तन का मतलब होता है किसी की कीर्ति का प्रसार करना, यानी कि भगवान की कीर्ति का बखान करना कि भगवान ने ये किया, यानी कि भगवान के विषय में बताना, भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का, भगवान के गुण आदि की चर्चा करना, इसका मतलब होता है कीर्तन करना। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, च का मतलब क्या हुआ, च का मतलब यहाँ पर है अनुमोदन, अनुमोदन करना। अनुमोदन का क्या मतलब होता है कि कोई भगवान की कथा कर रहा है या भगवान के विषय में श्रवण कर रहा है या भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है तो कोई उसे कह दे कि हम तो नहीं कर पा रहे हैं, पापी अपराधी हैं, समय नहीं निकलता, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं भगवान के भक्त, ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये इतना कह देना, ये अनुमोदन करना है कि हम उनको बुरा नहीं कह रहे हैं, इनके भक्तों की कोई निंदा नहीं, भक्तों का खाली भक्तों को ऐसा कह देना कि कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इससे भगवान अवश्य संतुष्ट होंगे। ये कीर्ति का जो भगवान कीर्ति का बखान कर रहे हैं उसका अनुमोदन जो कर रहा है वो भी भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति उन व्यक्तियों की प्रशंसा करता है या उनकी सहायता करता है। च जो शब्द है ना, श्रोतव्य कीर्तितव्य च, तो वो एक तो अनुमोदन और इस तरह से भी कि उनके कार्य में सहायता करना कि चलो ठीक है मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन उन्होंने जो ये कार्य किया है, अब कोई जैसे आयोजन करते हैं नामहत्ता फेस्टिवल का या फिर कोई भागवत कथा का, तो उसमें उनकी हेल्प करना धन से या फाइनेंशियली हेल्प करना या फिर कोई भी अलग से उनको राशन इत्यादि लेकर दे देना या फिर कोई भी इलेक्ट्रिशियन का करवा के दे देना, माइक साउंड सिस्टम रखवा के, इनकी जो भी उनका जो कार्य कर रहे हैं उनकी किसी तरह से सहायता करना, जो भक्ति कार्य कर रहे हैं उनकी किसी तरह से सहायता करना। वास्तव में भक्तों धन तो बहुत सारे लोगों के पास होता है परंतु भक्तों की हेल्प करना वो सिर्फ पुण्यवानों के हिस्से में आता है। भगवान हर किसी का धन स्वीकार नहीं करते, इसीलिए उनके हृदय में ये आता ही नहीं। जब भक्त लोग धन लेने के लिए आते ना तो भी उनके हृदय में ये आता ही नहीं है कि हम दें। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई लोग के घर में हम जाते हैं दान लेने के लिए तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों हम नहीं देना चाहते हैं या फिर ना हमें कोई उल्टी सीधी बात भी बता देते हैं। तो वास्तव में ये बहुत बड़ा पुण्य है, इतना ज्यादा किसी ने पिछले जन्म में पुण्य किया होगा तभी उसका धन भगवान अपनी सेवा में स्वीकार करते। यदि आपने बहुत बड़ा पुण्य किया होगा तभी भगवान आपकी इस जन्म की सेवा, कोई भगवान को प्रसाद अर्पण करता है, कोई भगवान के लिए कुछ फल फूल लेकर जाता है, कोई भगवान के लिए कुछ वस्त्र बनाता है, भगवान स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, आप वास्तव में कोई पुण्य आत्मा हो, वरना करोड़ों की भीड़ में भगवान ने एक तुम्हें ही चुना इस कार्य के लिए। किसी से भी करवा सकते थे, वो सर्वशक्तिमान है, किसी के भी हृदय को परिवर्तन करके अपनी सेवा करवा सकते, लेकिन वो आपसे करवाना चाहते हैं, इसलिए आप पर ही कृपा, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तो अगर कोई इस तरह भक्ति का अनुमोदन करता है तो जैसे ना कोई मंदिर बनाता है और मंदिर में आशा विग्रह स्थापित करता है कहीं से, मतलब भगवान की मूर्ति, कोई मंदिर है वहां पर मूर्ति नहीं है, विग्रह नहीं है, तो वहां कोई लेकर आता है और वहां पर स्थापित करवाता है और बहुत बहुत लोग कई कई कितने सालों तक ही भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, तो जो भी उस भगवान जो विग्रह आप लेकर आए उसको प्रणाम करेगा या उसको भक्ति करेगा या उसकी भक्ति करने से जो उसे लाभ होगा उस लाभ का कुछ हिस्सा आपके लिए होना चाहिए, आपके लिए होता है क्योंकि आपने ही उस मंदिर में मूर्ति स्थापित की। तो वो कितना हर दफा कोई भी आता है तो भगवान की मूर्ति को है ना प्रणाम करता है, उनकी भक्ति करता है, उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये जिसने अनुमोदन किया है, जिसने ये सहायता की है, उसको इस बात का फल डेफिनेटली मिलता है। और कहते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, कहही सुनही अनुमोदन करही, यानी कि जो भगवान की कथाओं को कहता है, जो श्रवण करता है या उसका अनुमोदन ही करता है कि हाँ कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं कर भगवान की कथा कीर्तन नहीं कर पा रही हूँ परंतु ये कितना अच्छा कर रहे हैं, तो कहही सुनही अनुमोदन करही भव भारत गौपद ए वही तरही, कि जो भव का समुद्र है, ये जो भव सागर है, वो जो लोग जो श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और उसको अनुमोदन करते हैं, वे गौपद एवं तरह, ये है तो बहुत ही गहरा समुद्र है, बहुत दुष्क्रिय है, इसको पार करना बहुत कठिन है, परंतु जो भगवान की कथाओं को कहता है, जो श्रवण करता है और जो अनुमोदन करता है, उनके लिए क्या होता है, गौपद में समाये हुए जो गौपद यानी गौ का जो खुर होता है ना, छोटा गौ का बच्चा होता है, उसका जो खुर होता है, उस वो जब समुद्र के किनारे पर चलता है तो वो क्या करता है, खुर के अंदर वो इसका एक स्टेम बन जाता है और उसके अंदर पानी जमा हो जाता है। तो उस गौ खुर को लांगना कोई बड़ी बात नहीं, कोई छोटा बच्चा भी उसको आसानी से लांग जाता है। तो ये जो भव सागर है वो उसके लिए गौपद में समाये हुए जल के जितना हो जाता है और वो उसको बड़ी आसानी से पार कर लेता है, जो भगवान की कथाओं को सुनता है, जो भगवान की कथाओं का गान करता है अथवा जो उनका अनुमोदन करता है। तो हमें सदैव भगवान के जो भक्त हैं उनका अनुमोदन करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्रोतव्य कीर्तितव्य च मतलब अनुमोदन करना और आगे ध्येय, ध्येय का मतलब होता है स्मरण करना, ध्यान करना, और पूज्यश्च अर्थात पूजा करना, वंदना करना, अर्चना करना, और आगे भी लिखा च। च का मतलब यहाँ पर च का मतलब क्या है कि ना, जैसे यहाँ पर नवदा भक्ति के कितने अंग लिखे हुए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो इसके बाद की बाकी अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन के ये सारे कार्य उसको करने चाहिए जो भगवान को प्रसन्न करना। पहले श्लोक में क्या किया, साव सिद्धिम हरि तोषण, कि आप हरि को प्रसन्न करो यही लाभ है। तो उसको कैसे करो, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, यानी पहले सुनो, कीर्तन करो, अनुमोदन करो, ध्येय ध्यान करो, पूजस्य पूजा करो, और ना भगवान के साथ अपना एक प्रेम संबंध निर्माण करो। कब, नित्यदा। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि इतने टाइम पीरियड के लिए आपको ऐसा करना, नहीं, नित्यदा का मतलब होता है कि वो समय जो कभी समाप्त ना हो, आपको सदैव भगवान के लिए भक्ति करनी, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है और भगवान का स्मरण करना है, भगवान के ना पूजा करनी, अर्चना करनी है। तो ये कंटिन्यूज होना चाहिए, नित्यदा, नित्यम भागवत सेवया, सदैव भगवान के श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना, नित्य कीर्तन नीह सदा हरि कंटिन्यूज करना है। इसमें ऐसा नहीं है, वी हमारे सनातन धर्म की यह विशेषता है कि इसमें आप भक्ति सदैव कर सकते हो, क्योंकि भक्ति पर्टिकुलर एक नहीं बताई गई कि भाई एक यही कार्य भक्ति है, नहीं, आप अपना भौतिक कर्तव्य पूरा करते करते भी आप भक्ति कर सकते हो, उसमें आपको कोई विघ्न नहीं आएगा। आप खाना बना रहे हो, एकदम इंद्रिय तृप्ति की बात है, लेकिन वो ये सोचकर बना रहे कि भगवान को खिलाऊंगा, और भगवान को खिलाए तो वो भक्ति बन गया, प्रसाद बन गया। आप अपना ही कोई कार्य कर रहे हो, अपने घर की सफाई कर रहे हो, लेकिन क्योंकि मेरे घर में भगवान रहते हैं तो मैं भगवान के इस निवास स्थान को पवित्र करूं, अच्छा करूं। कोई भी कार्य आप कर रहे हो, यदि उसके अंदर कृष्ण को ईट कर दिया तो वो भक्ति हो जाती है। वास्तव में जो दूसरे धर्म है उनके यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जैसे अगर क्रिश्चियन को लें तो वो क्या करते हैं, संडे के संडे आप जाते हैं चर्च में और पादरी के सामने अपने, क्यों जाते हैं, पादरी के सामने अपने जितने भी उस संडे से लेकर इस संडे तक उसने अपराध किए हैं उनको, उन अपराधों को देने के लिए कि लो ये अपराध आप रख लो, ताकि मैं फ्री हो जाऊं नेक्स्ट वीक में दूसरे अपराध करने के लिए, और आप सफर करते रहो। यानी कि ये सारे के सारे में तुम्हें अपराध देने के लिए भगवान के साथ प्रेम निर्माण करने का कोई नहीं बताया जाता कि बस आप क्या करो, इस तरह से करो और इस तरह से आप अपने अपराधों से छूट जाओगे। वास्तव में अपराधों से छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उस समय जब आपने पहली बार भगवान का नाम लिया उसी समय आप समस्त अपराधों से छूट गए। एक बार जब आपने तुलसी महारानी की परिक्रमा की तो यानी कानी जप्पा वाणी ब्रह्म हत्यादिकानी सा तानी तानी प्रणश्यति प्रदक्षिणे पदे पदे, एक एक पद पर आपकी ब्रह्म हत्या का पाप नाश होता है। आपको उसके लिए और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करना है ताकि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है चरम लक्ष्य, और श्रवण कीर्तन आदि का लक्ष्य यही होना चाहिए। केवल ये नहीं कि मैं अपराधों से मुक्त होने के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो ये कब करना है, कब कब करना है? नित्यता कंटिन्यूस करना है। उसमें कोई विच्छेद नहीं होना चाहिए, उसमें कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए, सदैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुवाद देखिए, अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन भगवान के विषय में निरंतर श्रवण गुणगान स्मरण तथा पूजा करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। क्योंकि पहले ही बता दिया कि आपके अगर आप अपना वर्णाश्रम धर्म अच्छे तरीके से कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि भगवान आपसे अगर संतुष्ट हो रहे हैं तो वो सही है, वरना तो सारा का सारा व्यर्थ है। तो श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर यही परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो हर संभव साधन से उसको करना चाहिए। हर संभव मतलब नवधा भक्ति के जितने भी साधन है उनको करना चाहिए कि भगवान को संतुष्ट करना ही तो जीवन का लक्ष्य है। तो उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान श्रवण स्मरण तथा पूजन, ये चार विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। यानी कि वर्णाश्रम धर्म में आप किसी में भी हो, कोई भी आपका धर्म हो या कोई भी आपका वर्ण हो, आप ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो या शूद्र हो, ब्रह्मचर्य हो ग्रस्त हो वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, तो जितने जो उनसे भी हैं आपके वर्ण और आश्रम, उसके अंदर ये चार चीजें होनी चाहिए। क्या? श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येय पूजस्य, यानी भगवान का गुणगान श्रवण करना, भगवान की है ना कीर्ति का बखान करना यानी भगवान के नाम का जप करना या भगवान की कीर्तन करना, भगवान के नाम का स्मरण करना और पूजा करना, ये चार विद्या सामान्य वृत्तियां हैं, ये जरूर करनी। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो इन चार चीजों के साथ होना चाहिए। यानी कि बाकी हमारे कोई भी फराइज होते हैं, कोई भी वर्णाश्रम के अनुसार हमारे कर्तव्य होते हैं, तो उसके साथ ये चार चीजें अवश्य करनी चाहिए। हमें इन चार चीजों में व्यस्त रहना चाहिए, ये चार चीजें सदैव करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने दूसरे कार्यों में जो भौतिक हमारे कार्य उसमें इतना व्यस्त हो जाए। लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं, कहते हैं इतना स्टडी है हमारे पास, इतना स्टडी करना है कि समय नहीं मिलता है कि हम भगवान के नाम का जप करें, लेकिन इससे तो फिर आपका आना या जन्म लेना तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं, विशेषतः आधुनिक समाज में तो सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आधुनिक समाज के बारे में बताया। पहले तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि खास तौर पर जदीद माशे में यानी कि आधुनिक समाज में श्रवण और कीर्तन मुख्यतः आधारित है। बहुत ज्यादा अगर कोई चीज आज क्या है, मीडिया हर चीज को फैलाने के लिए श्रवण और कीर्तन वो क्या कर रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं, तो इसी पर सारा समाज डिपेंडेड है, कार्य कर रहा है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले कि और लेकिन कार्य क्या हो रहा है, श्रवण और कीर्तन किस बात का हो रहा है, बिल्कुल बेकार चीजों का, बिल्कुल बेकार व्यक्तियों का। जैसे यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वह कुछ ही काल में, जैसे चाहे उसकी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है, फौरन से फेल जाता है। कैसे? श्रवण और कीर्तन से। कुछ लोग उसकी कीर्ति का बखान करते हैं और कुछ लोग श्रवण करते हैं। मीडिया यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे वह गुणगान झूठा ही क्यों ना हो, तो या सच्चा हो या झूठा हो, यानी कि जो न्यूज़पेपर में गुणगान हो रहा होता है उसको भी पढ़ते हैं। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रचारित होता है, कोई पॉलिटिक्स लीडर्स होते हैं उनका समाचार पत्र में आता है या फिर न्यूज़पेपर में उनके बारे में पढ़ते हैं, और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। पहले तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि श्रवण और कीर्तन उसका होता है बहुत, यानी कि उसका गुणगान किया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा सब उसको जानने लगते हैं, विख्यात हो जाता है, बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से ना तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का, भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते सब लोग कीर्तन और श्रवण ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले कि हर क्षण हम श्रवण कर रहे हैं और हर क्षण बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा फिजूल व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है, तो फिर इससे ना आपका लाभ होगा ना ही हमारा लाभ होगा, क्योंकि इसकी कीर्ति आज है। तो यहाँ भले क्षणिक प्रतिक्रिया हो, थोड़े समय के लिए भले उसका लाभ हो, जैसे हिटलर है, महात्मा गांधी है, उन समय तो जब वो होंगे तब तो उनका कितना बखान होगा, कितनी कीर्ति होगी, लेकिन समय के साथ सब समय वेस्ट खत्म हो गया। उनका कीर्तन जिसने किया या जिसने उनका गुणगान किया, उनको कोई लाभ तो नहीं हुआ ना, उनका लाभ स्थायी तो नहीं है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है, कि क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, क्योंकि इससे आपका कोई इटरनल लाभ नहीं होने वाला है। और गुणगान तो भगवान का करना चाहिए, जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। अगर आपको बात ही करनी है, तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यदि गुणगान करना है, श्रोतव्य कीर्तितव्य, ये कीर्तन करना है या श्रवण करना है, तो केवल और केवल भगवान के विषय में, क्योंकि हमारे सामने प्रकट होने वाली हर वस्तु भगवान की देन है। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवतम के जन्मादस्य वाले प्रथम श्लोक में के प्रारंभ में ही कर चुके हैं, जब हमने श्लोक पढ़ा था जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतस्, जो कुछ पर संसार में है उसका रचयिता, उसको उत्पन्न करने वाला, उसका स्रोत्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान है। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते क्योंकि लाभ को देखो ना, आपके जीवन का लाभ ही ये है कि भगवान को प्रसन्न करो, और आप करते क्या हो सदैव, उसको करने के लिए क्या करना है, गुणगान करना है और श्रवण करना है, यानी श्रवण और कीर्तन करना है, तो वो ऐसे भगवान का करना चाहिए ताकि आपको वास्तविक लाभ पता चल सके, वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख उपजेगा, इसी से सब संतुष्ट हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, जब हम उनके नाम का कीर्तन करते हैं, जब हम उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। तो क्योंकि इसी से, इस भगवान के पवित्र नाम का जप करने से और भगवान की कथा को श्रवण करने से ही, और जप के अंदर भी आपका भाव तभी उत्पन्न होगा जब आप श्रवण करोगे। तो फिर क्या करना है, कौन है ऐसा जो कि यूं नहीं करना चाहेगा, जो भगवान की कथाओं को श्रवण करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसी से सब कुछ होने वाला है। तो ये आगे बता रहे हैं इसी चीज को, कहते हैं मेरे साथ साथ है ना, उच्चारण कीजिए श्लोक नंबर 15 को। यदनु ध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम् च छिन्दन्ति कोविदास्तस्य कोनकुर्यात् कथारतिम् यदनोध्यासिना युक्ता कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् 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 छिन्दन्ति कोविदास्तस्य कोनकुर्यात् कथारतिम् यदनुध्यासिना युक्ता कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् छिन्दन्ति कोविदास्तस्य कोनकुर्यात् कथारतिम् यदनुध्यासिना युक्ता कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् छिन्दन्ति कोविदास्तस्य कोनकुर्यात् कथारतिम् यदनुध्यासिना युक्ता कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् छिन्दन्ति कोविदास्तस्य कोनकुर्यात् कथारतिम् यत् अनुध्यासिना युक्ता कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् छिन्दन्ति कोविदास्तस्य कोनकुर्यात् कथारतिम्। शब्दों का अर्थ देखिए, यद मतलब जो, अनुध्यास यानी अनुध्या मतलब स्मृति रूपी, असिना, असिना कहते हैं तलवार को। अब जो भगवान की ये जो ध्यान है ना भगवान का, भगवान को स्मरण करना, वो एक तलवार की तरह है। उस तलवार से क्या होता है, भगवान की स्मरण से यद अनुध्यासिना, अनुध्यासिना यानी ध्यान रूपी तलवार, उस ध्यान रूपी तलवार से क्या होता है, युक्ता यानी युक्त यानी समन्वित कर्म ग्रंथिनी बंधनम, कर्म मतलब कर्म की, ग्रंथिनी मतलब गांठ, निबंधनम मतलब बंधी हुई। इससे क्या होता है, आपके जो कर्मों की गांठ, कर्मों के बंधन की जो गांठ बंधी हुई है, जिसके कारण आपको बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसकर दुख भोगने पड़ते हैं, वो क्या हो जाती है, छिन्दन्ति, छिन्दन्ति मतलब कट जाती है। आपके कर्मों का बंधन, आपके दुखों का बंधन, आपके कष्टों का बंधन, जो आपके कर्मों के कारण आपको दुख कष्ट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हो, बारंबार माता के गर्भ के दुखों को भोग रहे हो और संसार के प्रेताप को भोग रहे हो, वो ग्रंथनी बंधन जो है वो छिन्दन्ति को टूट जाता है, फिर आपको कोई कष्ट नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगे, आप इन दुखों भरी दुनिया से पार होकर उस जगह पर चले जाओगे जहाँ पर कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये किससे प्राप्त होगा, केवल भगवान की कथा, क्योंकि ध्यान तभी लगेगा ना भगवान की, भगवान में जब आप भगवान की कथा को श्रवण करोगे, और जब आपका ध्यान लग जाएगा, भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा कथा श्रवण करने से, तो क्या होगा, आपके समस्त कर्मों के बंधन टूट जाएंगे। और आगे क्या होगा, तो आगे कह रहे हैं कि कोविदास, कोविदास का मतलब होता है बुद्धिमान। तो जो अक्लमंद होंगे ना, जो बुद्धिमान होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो सदैव भगवान के नाम का श्रवण करेंगे ना, भगवान की कथाओं का, ताकि उनका उनकी कर्म ग्रंथनी बंधन जो है वो टूट जाए। तो आगे बोल रहे तस्य को, यहाँ क्या बताया कि कोविदास तस्य कोन कुरियाद कथार, तस्य मतलब उसका, कोन कुरियाद कथारती, कोन कुरियाद मतलब को मतलब कह मतलब कौन, ना मतलब नहीं, कुरियाद मतलब करेंगे, कथारती कथा यानी संदेश यानी कथाओं का ध्यान। यहाँ पर इतना सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि आप वाकई में बुद्धिमान हो, तभी तो भगवान की कथाओं का श्रवण करने के लिए आप इतने उत्सुक हो, क्योंकि ये जो भगवान की कथा है उसका श्रवण करने से आपके कर्म ग्रंथ कर्म की जो ग्रंथनी है, जो बंधन है, वो टूट जाएंगे। तो आप तो बुद्धिमान हो, लेकिन कोई बेवकूफ भी होगा तो भी इतना आसानी से यदि हमारे दुखों का नाश होने वाला है, हमारे कर्म बंधन का नाश होने वाला है, तो कौन कुरियात कथा रति, कौन ऐसा होगा जो भगवान की कथा में रति नहीं लगाएगा, कौन बेवकूफ ऐसा होगा, कौन ऐसा ना मूर्ख होगा जो इतना सरल उपाय अपने दुखों से बचने का वो नहीं अपनाएगा। यानी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताइए वो क्या है, कथा रति। कि कथा के अंदर रति हो जाए ना, फिर ध्यान लगाना बहुत संभव हो जाएगा। और ध्यान से क्या होगा, प्रेम से क्या होगा, क्योंकि कथा से प्रेम उत्पन्न होगा ना, प्रेम से क्या होगा, कर्म ग्रंथनी टूट जाएगी। तो कौन ऐसा है जो कथा से प्रेम नहीं करेगा, कौन कुरियात कथा रति, कौन ऐसा है जो भगवान की कथा में हृदय नहीं लगाएगा, ऐसा कौन है जो कथा से प्रेम नहीं करेगा, कौन ऐसा बेवकूफ है जो भगवान की कथाओं को श्रवण करने की ओर रति नहीं होगी, जिसकी जिसका आकर्षण नहीं होगा। अनुवाद देखिए, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। यानी कि ध्यान करते ना भगवान का स्मरण करते हैं तो कर्म की ग्रंथनी बंधन जो है, कर्म की बंधी हुई ग्रंथ गांठ जो है वो खुल जाती है और फिर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, बारंबार जन्म लेना पड़ता है। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेशों की ओर ध्यान नहीं देगा, तो क्योंकि वो सदैव जो भगवान जो बुद्धिमान होंगे वो तो क्या करेंगे, कथा सुनते हैं भगवान का और अपने ध्यान से उन कर्म ग्रंथनी को तोड़ देते हैं। तो बेवकूफ लोग कौन होंगे जो नहीं सुनना चाहेंगे भगवान की कथा, कौन ऐसा होगा। श्रील प्रभुपाद जी वो सुंदर रीति समझाएंगे। अभी मैं तो ऐसे कहूंगी कि कौन ऐसा है जो कथा में रति रखता है, कितने से सुनते थे, अभी वो भी कम हो गए, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद शुभपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक सफुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देता है, अतः जो कर्म के घात प्रघात से मुक्त होने के इच्छुक होते हैं उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। यहाँ पर शुभपाद जी बोलते, क्योंकि हम भौतिक इस संसार में आते हैं और इस प्रकृति यानी शरीर के अंदर आ जाते हैं तो हम कर्म करते हैं और कर्म की ये जो श्रृंखला है ना, एक जंजीर की तरह बन जाती है और हम उस जंजीर में जकड़ जाते हैं और बारंबार जो है हमें ना इस जन्म मृत्यु के चक्कर में दुख भोगने पड़ते हैं। तो जो कर्म की घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक है, जो चाहता है कि मैं इस जंजीर से आजाद हो जाऊं, तो उसे इस ग्रंथि को काटना पड़ेगा, फिर उस जंजीर को, उस ग्रंथ को, उस ग्रंथि यानी गांठ को काटना होगा। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्कर से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो जब हम दिव्य लीलाओं को श्रवण करते हैं तो हम भौतिक स्थिति से बहुत ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की दिव्य लीलाएं तो दिव्य स्टेज तक पहुंच जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। ये दिव्य लीलाएं परम आकर्षक होती हैं, अतः इनके निरंतर सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिक बनता जाता है, क्योंकि ये दिव्य लीला है और भगवान की कथा हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तो और भी सुनने का दिल करता है और भद्र जीव जो है आहिस्ता आहिस्ता आध्यात्मिक बनता जाता है। उसको ये भौतिक वस्तुओं से और भौतिक जीवन से कोई प्रयोजन नहीं रहता, केवल कथा में इतना आकर्षण हो जाता है तो वो आध्यात्मिक बन जाता है, क्योंकि कथा आध्यात्मिक होती है। अंततः उसकी भावबंधन की ग्रंथि कट जाती है, क्योंकि भावबंधन की ग्रंथि क्यों है, क्योंकि आप भौतिक धरातल पर भौतिक स्तर पर हो और भौतिक कार्य कर रहे हो, लेकिन जब आप आध्यात्मिक कार्य करना शुरू करते हो तो आप आध्यात्मिक स्थिति पर आ जाते हो और ऐसा ऐसा आपकी कर्म की ग्रंथि जो है वो टूट जाती है। अतः भावबंधन से मुक्ति मिलना भक्ति के का गौण फल है। अब यहाँ पर श्री भगवान जी बहुत सुंदर बता रहे कि मुक्ति तो बहुत गौण फल है, यदि आप भावबंधन से मुक्त हो रहे हो तो बहुत छोटी बात है ये, भक्ति के लिए ये कोई बड़ी बात। भक्ति से क्या मिलना चाहिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो कर्मों के बंधन से मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित मिल जाती है। खाली ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, श्रवण खाली कर लो, कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए भगवान के विषय में, तभी आपको है ना मुक्ति प्राप्त हो जाती है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित से प्राप्त हो जाती है। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना होता है, खाली पता चल जाना कि कृष्ण ही सर्वस्व है, अभी तक प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, तभी से कर्म ग्रंथि तो टूट गई। जैसे आप तुलसी महारानी की परिक्रमा कर रहे हो, भले उसके अंदर इतनी श्रद्धा नहीं है, लेकिन आपने भगवान का एक बार नाम भी ले लिया ना, तो भी कर्म ग्रंथि तो छूट जाएगी, क्योंकि कर्मों का चक्कर तो खत्म हो ही जाएगा। और उसके ऊपर यदि भक्ति का लेप चढ़ा दिया जाए, उस कर्म के अंदर जो आप कार्य कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, उससे वैसे ही श्रवण और कीर्तन से वैसे ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी भववर्णन से। लेकिन यदि उसमें प्रेम है, उसमें बहुत ज्यादा आकर्षण है, तो उसमें रति है, तो वे चढ़ाना होता है जिससे अंततः भक्ति प्रदान होती है। भक्ति साध्य है, साधन भी है जिससे हम भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन भक्ति जो प्रेम है ना वो उत्पन्न हो जाता है, तभी मुक्ति संभव होती है। फिर मुक्ति क्या होती है, वो अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, फिर आप अपने स्वरूप में कृष्ण के दास के रूप में आप अपने आप को जानने लगते हो। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म यदि वे भक्ति से लेपित हो तो मुक्ति दिला देते हैं। अब सकाम कर्मी हैं, यदि कोई भी कार्य करते हैं, जैसे भगवान बताते हैं 7.15 में कि चार प्रकार के लोग आते हैं मेरे पास, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोषु आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी च। तो अगर कोई आर्तो है यानी धन हासिल करने के लिए आया है, या दुखों को खत्म करने के लिए आया है, या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है, तो आया तो भगवान के पास है ना। तो यदि वो कर्मी है, कर्मियों के कर्म यदि वे भक्ति से लेपित होते हैं, भक्ति मतलब भगवान के साथ यदि उनका संबंध हो जाता है, तो वो मुक्ति दिला देते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। अब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कार्य में यदि भक्ति है, आप ये सोचकर कर रहे हो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, उसमें भक्ति यदि आपने डाल दी तो वो कर्म योग बन जाता। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग हो जाता है। अब देखो, वैसे तो खाली ज्ञान होगा, वैसे खाली कर्म होगा, उसमें भक्ति सम्मिलित हो गई तो क्या हो गया, कर्म योग हो गया, फिर भगवान को प्रसन्न करेगा। वैसे तो खाली आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो शास्त्र पढ़ के, लेकिन यदि उसके अंदर भगवान के साथ प्रेम सम्मिलित कर दिया तो ज्ञान योग हो गया। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र होता है। शुद्ध भक्ति क्या होती है, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माध्यनावृतम। शुद्ध भक्ति के अंदर न ज्ञान योग होता है न कर्म योग होता है, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग होता है। तो भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह केवल ही न केवल बद्ध जीवों से मोक्ष दिलाने वाला है, बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान कराने वाला है ना। इससे खाली भावबंधन से मुक्ति नहीं है, कर्म ग्रंथ नहीं तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि भक्ति क्यों जो की जाती है, भगवान का प्रेम से नाम श्रवण किया जाता है, भगवान की कथाओं का प्रेम से श्रवण करना एवं प्रेम से नाम जप करना एवं कीर्तन करना, उससे तो भगवत प्रेम की प्राप्ति होती, तो वो बहुत आगे की बात है। लेकिन यदि आप श्रवण कर रहे हो, बस खाली कर्मयोग कर रहे हो, तो वो भी आपको कर्म के ग्रंथ जो है उससे वो टूट जाएगी। लेकिन प्रेम प्राप्त होता है केवल जिसके अंदर आपका कोई लाभ ना हो, जो आप भगवान के लिए कर रहे हो उसके अंदर आपकी कोई इच्छा ना हो। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो अल्पज्ञ मध्यम पुरुष से ऊपर है, श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन द्वारा भगवान को निरंतर स्मरण करना चाहिए। तो जो अक्लमंद है, तो श्री रूपा जी बोलते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, भगवान की ये नवदा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन ये जरूर करना चाहिए। हर भक्त को करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए और भगवान की विग्रह पूजा करनी चाहिए। हर किसी भक्त को करना चाहिए जो बेवकूफ नहीं है, जो अपने आप को कहते ना मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तो उसको ये चार काम करने चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है, इसी को भक्ति कहते हैं। वृंदावन के गोस्वामियां जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति संप्रदाय का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य ज्ञान का प्रभूत साहित्य तैयार किया। गोस्वामी जन को भी चैतन्य महाप्रभु ने यही भक्ति करने के लिए कहा और वो वृंदावन में भगवान की कथाओं को श्रवण करते थे, भगवान की पूजा करते थे, भगवान का स्मरण करते थे और भगवान की कथाओं के लिए लिखते थे। यानी कि हमें यहाँ पर लिखा ना कि इस नियम का दृढ़ता से पालन करते थे और उन्होंने हमारे लिए दिव्य ज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने बहुत हमारे लिए शास्त्र लिखे ताकि हमारे लिए भक्ति करना सहज हो जाए। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य प्रमाण शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए। उन्होंने ऐसे शास्त्र जो कि ना श्रीमद् भागवतम और दूसरे प्रामाणिक शास्त्रों पर की टीकाएं हैं, ऐसे शास्त्र बनाए ताकि सामान्य लोग के लिए ये चार काम करना आसान हो जाए। कौन से? श्रोतव्य, कीर्तितव्य, ध्येय, पूज्य, नित्यदा। वो सदैव भगवान की कथाओं को श्रवण कर सके, कीर्तन कर सके, ध्यान कर सके और पूजा कर सके। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर, भगवान सूत गोस्वामी ने कहा, ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो इतनी सरल विधि से कृष्ण प्रेम प्राप्त करना नहीं चाहेगा, जिससे उसके कर्मों की ग्रंथनी तो टूट ही जाएगी, उसे बारंबार दुखों को तो भोगना नहीं पड़ेगा और साथ साथ में भगवत प्रीति भी प्राप्त होगी। तो कौन बेवकूफ होगा जो कथा को श्रवण करना नहीं चाहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।